Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama.
Hare Rama.
Hare Rama. Rama Rama.
Rama Rama.
Hare Hare.
Hare Hare.
Hare Krishna. आप सबका स्वागत है श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्रचार केंद्र मन टाइम ब्लास में। आज 13 तारीख है और 6 दिन के बाद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रकट्य दिवस है गौर पूर्णिमा। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण साक्षात जब विचार करने बैठे गोलोक वृंदावन में अपने धाम में कि मैं भगवद गीता का तो ज्ञान देकर आया हूं, उसमें मैंने संदेश दिया है सबको कि मेरे भक्त बनो। भगवद गीता में क्या शिक्षा दी है भगवद गीता ने, मैं भगवान श्री कृष्ण ने भाव मदर भक्ता मेरे भक्त बनो। भगवान की इच्छा है कि सब लोग भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सब लोग मेरे भक्त बने। ऐसे ही रामायण में भी शिक्षा है कि जो राम भक्त है वही अमर है। जैसे हनुमान राम भक्त है तो वो अमर हो गया, जो राम भक्त नहीं है वो संसार में अपना समय बेकार में खराब कर रहा है। तो भगवान ये दो ही भगवान के अवतार लीला अवतार है, श्री कृष्ण और श्री रामचंद्र। अवतार तो भगवान के अनेक हैं, लेकिन इन दो अवतारों में भगवान अपने स्वरूप में आए हैं और उन्होंने कुछ विशेष लीलाएं की हैं जिनके श्रवण करने से जिनको सुनने से हमारा मन भगवान में लगता है, हम भगवान को प्रणाम करते हैं नमस्कार करते हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं और हम भगवान के भक्त बनते हैं। ये 4 चीजें भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा मांगी है, भव मद भक्तों मेरे भक्त बनो, नाम नमस्करो मुझे नमस्कार करो, मद याजी मेरी पूजा करो, मन मना मन मुझ में लगाओ। तो हमारा मन भगवान में कैसे लगेगा, जब भगवान की लीला की कथा सुनेंगे। जब रामायण सुनते हैं तो राम में मन लगता है, भागवत सुनते हैं तो कृष्ण में मन लगता है। तो किसी में मन कब लगेगा, जब उसकी कथा महिमा सुनेंगे। तो भगवान की लीला कहानी भगवान की महिमा, तो केवल ये दो ही ऐसे भगवान श्री राम कृष्ण साक्षात अवतारी भगवान है जो स्वयं केवल एक बार ही ब्रह्मा के दिन में आते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 72 मतलब 72 टाइम्स 4 युग गुजर जाते हैं। जब 28वां कलयुग आता है, जब और द्वापर युग आता है, उस द्वापर युग के एंड में अंत में भगवान श्री कृष्ण साक्षात आते हैं। नहीं तो और कलयुग में भी कृष्ण के दूसरे रूप में कृष्ण अवतार आते हैं, लेकिन साक्षात स्वयं कृष्ण केवल द्वापर के एंड में आते हैं। अभी जिस कलयुग में हम रह रहे हैं, अब हम जो रह रहे हैं, इससे पहले जो द्वापर आया था उसमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण आए थे और भगवद गीता की शिक्षा दे के गए थे और उसमें यही कहे गए थे कि मेरे भक्त बनो। लेकिन कोई भक्त नहीं बन रहा था, लोग पता नहीं किस किस के भक्त बनते हैं लेकिन भगवान के भक्त बनने को तैयार नहीं है। भूत प्रेत के तो भक्त बन जाते हैं, भूत के भक्त ज्यादा है, भगवान के भक्त कम है। तो भगवान ने कहा कि मैं कैसे कृपा करके, करुणा करके, दया करके फिर जाऊं और लोगों को भक्ति कैसे करनी है ये सिखाऊं। तो ये भगवान बहुत बड़ी दया करके, करुणा करके, कृपा करके अपनी भक्ति सिखाने के लिए भक्त बनकर आए। भगवान ही भक्त के रूप में भक्ति कैसे करनी चाहिए ये सिखाने के लिए स्वयं भगवान आ गए। भगवान भक्त बन के आए। भक्ति सिखाने के लिए तो कौन सबसे उत्तम भक्ति भगवान की करता है? फिर ये प्रश्न उठता है कि भगवान की भक्ति सबसे उत्तम कौन करता है? कहीं भी आप भगवान नारायण का मंदिर देखेंगे तो उनके चरण दबाते हुए कौन होता है? लक्ष्मी माता। लक्ष्मी नारायण की सेवा करती है प्रेम से। दंडक अरण्य में जाते हुए श्री रामचंद्र को सीता जी के साथ, लक्ष्मण के साथ देखकर सब ऋषियों ने कहा कि जिस प्रेम से मां सीता भगवान श्री कृष्ण की सेवा करती है, भक्ति और प्रेम करती है, ऐसा तो हमको मौका मिलता ही नहीं है, कभी ऐसा मौका मिलना चाहिए। तो राम जी की भक्ति कौन करता है? सीता। उससे ज्यादा कोई प्रेम भक्ति राम जी के आशा। यहाँ एक बात ये और किसी अवतार ने आज तक नहीं बताई है, सिर्फ चैतन्य महाप्रभु ने हमको ये शिक्षा दी है। भगवान के आप सेवक बन सकते हो जैसे हनुमान राम का सेवक है, लेकिन भगवान की भक्ति की शक्ति ये है कि भगवान छोटे बन जाते हैं और आप बड़े बन जाओ और भगवान के माता पिता बन जाओ, भगवान आपका बेटा बन जाएगा। कौशल्या और दशरथ राम जी के माता पिता बन गए। तो भक्ति में इतनी शक्ति है कि भगवान छोटे बन जाते हैं और भक्त बड़ा बन जाता है। भक्त माता पिता बन गया और भगवान उनके घर में बैठ के खेल रहे, छोटे बन गए। तो अरे भक्ति के अलावा और किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि भगवान को छोटा कर ले और भगवान छोटा होने को तैयार है। और ये चेतना महाप्रभु ने पहले ऐसे शिक्षा दी है कि भगवान अपने भक्त के वश में इतना हो जाते हैं, प्रेमी भक्त के वश में, कि उसको बड़ा बनाते हैं, खुद छोटा बन जाते हैं। अब भगवद गीता तो देखिए ना, ये देखो भगवद गीता, ये भगवद गीता है ना, हरे कृष्ण। इसमें देखेंगे कहाँ बैठा है अर्जुन? ऊपर अर्जुन बैठा है ना, भगवान नीचे बैठे कि नहीं बैठे? भगवान ने अर्जुन को ऊपर बिठाया, खुद नीचे बैठे। भगवान घोड़ा ड्राइवर बन गए हैं और अर्जुन ऊपर बैठा है। तो भगवान अपने भक्त को अपने से ऊपर बनाते हैं कि नहीं, बड़ा बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? अर्जुन भगवान का सखा है, मित्र है, फ्रेंड है। तो ऐसा फ्रेंड है जिसको भगवान ने अपने से ऊपर बिठा दिया है। और भगवान को आप अपना प्रेमी बना सकते हैं, आप उससे प्रेम करें, वो आपसे प्रेम करेगा। तो माता सीता, तो ये जो भगवान के संबंध भगवान के साथ हमारे हैं, दास बनना, भगवान का सेवक बनना, भगवान का फ्रेंड बनना, भगवान का माता पिता बनके उसकी देखभाल करना और भगवान से प्रेम करना, भगवान को प्रेमी मानना, इन चारों में भगवान से प्रेम करना सबसे ऊपर है। भक्ति के इन चार चीजों को कहते हैं दास्य भक्ति, मतलब भगवान का सेवक बनना जैसे हनुमान जी, सख्य भक्ति भगवान का मित्र बनना, फ्रेंड बनना। देखो सेवक होकर बाहर बैठा होगा, बुलाओगे तो आएगा, कहोगे तो काम करेगा, लेकिन फ्रेंड होगा तो अंदर जलाएगा। फ्रेंड जरा ज्यादा नजदीक होता है। तो जब सखा कोई बनता है तो उसमें दास भक्ति तो होती है, लेकिन सखा की भक्ति भी आ जाती है। लेकिन भगवान का कोई माता पिता बनता है तो सेवा तो करता ही है, बहुत निकट का मित्रता जैसा होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा भगवान को समझता है, मैं खिलाऊंगा तो खाएगा, नहीं तो भूखा मर जाएगा, मैं चलाऊंगा तो चलेगा, नहीं तो कैसे चलेगा। तो उसमें तीनों चीजें आ जाती है, लेकिन जो भगवान से प्रेम करता है उसमें चारों चीजें होती है। तो सबसे भक्ति की परिकाष्ठा, भक्ति की जो हाइट है, क्लाइमेक्स है, वो प्रेम भक्ति है। और प्रेम भक्ति में भी माधुर्य रस, कांजुगल प्रेम, और उसकी परिकाष्ठा क्या है, जैसे सीता जी को राम जी को प्रेम की सेवा करते हुए देखे, दंडक आने के सारे ऋषियों ने कहा ऐसा हमको कब मौका मिलेगा कि राम से हम प्रेम कर सकेंगे। तब राम जी ने उनको कहा था, इस वक्त मैं एक पत्नी वंशधारी मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, अब जब आगे मैं कृष्ण बन के आऊंगा अथवा कृष्ण का जब अवतार होगा तब आप सब दंडक आने के ऋषि गोपियों बन के आना और मुझसे प्रेममयी सेवा करना। तो कृष्ण के गोपियों में एक गोपियों का बहुत बड़ा ग्रुप, उनको कहते हैं ऋषि गोपियां, वो सारे दंडकारण्य के ऋषि थे जो बहुत बड़े तपस्वी थे, लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री राम से प्रेम भक्ति का वरदान मांगा था, तो उनको प्रेम भक्ति भगवान श्री रामचंद्र ने आशीर्वाद देके दी थी और वो कृष्ण के अवतार में गोपियां बने थे, उनका नाम है ऋषि गोपियां, वो ऋषि गोपियां बन के आए थे। तो प्रेम भक्ति, कृष्ण के साथ प्रेम भक्ति की जो हाइट है, क्लाइमेक्स है, जो परिकाष्ठा है, वो श्रीमती राधा रानी, भगवान और भगवान की शक्ति। शक्ति का नाम पहले आता है, शक्तिमान का नाम बाद में आता है, राधा कृष्ण सीताराम लक्ष्मी नारायण, शक्ति का नाम पहले आता है, शक्ति नाम का नाम बाद में आता है। तो ये भक्ति की शक्ति की जो सबसे ऊपर का स्तर जिसका है, वो जब कृष्ण आए तो सबसे ऊपर भक्ति कौन करता है, कृष्ण सोच रहे हैं, तो सबसे उत्तम मेरी भक्ति, जो सबसे श्रेष्ठ मेरी भक्ति का कोई व्यक्ति है तो वो राधा रानी है, जो मेरी शक्ति है, स्त्री नहीं, राधा रानी साधारण स्त्री नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अपने आप से अपने आप को एक और रूप में प्रकट किया है और उस रूप का नाम है राधा। जैसे आप इसको ऐसे समझ लें, शीशे के अंदर, मिरर के अंदर आप अपनी शक्ल देखते हैं, तो उस शक्ल और आप में कोई अंतर नहीं, आप और आपकी शक्ल तो एक ही है ना, उस शक्ल को देख के आपको कोई पराया नहीं लगता है, अपना ही लगता है, उससे कोई आपको भेदभाव भी नहीं है, संकोच भी नहीं है। अब मिरर में अपने को जब देखते हैं तो वो मिरर में तो वो हमारा प्रतिबिंब होता है, उसको अक्ष बोलते हैं या इमेज बोलते हैं, लेकिन ये तो साक्षात भगवान का विस्तार है राधा रानी, भगवान का एक्सपेंशन है, कृष्ण से प्रकट हुई है। तो आज श्री कृष्ण ने उस भक्ति की परिपूर्ण मूर्ति, भक्ति की परिपूर्ण मूर्ति, परिपूर्ण का मतलब कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डिवोशनल सर्विस, उसको अपने में वापस मिला लिया, अपने में वापस मिला लिया, अपने में एब्जॉर्ब कर दिया। और क्यों ऐसे किया, क्योंकि भगवान को सिखाना क्या था, भक्ति, तो भक्ति सिखाना था तो भक्त बन के सिखाना पड़ेगा ना। आप किसी को कहो कि मुझे, आप बेटी को बोलो तुम्हारे को मैं पकाना सिखाऊंगी रसोई घर में, किचन के अंदर, तो आप किचन के अंदर जाओगी तो गाउन बांध के, कपड़ा बांध के, और अब खुद पकाना शुरू करोगे तो वो सिखाओगी नहीं तो कैसे सिखाओगी, ऐसे कैसे सिखाते हैं, आपने बच्चों को कैसे सिखाते हैं, लाकोजी क्या बोलते हैं, लाकोजेन क्यों क्वेश्चन लाखों से, तो सिखाओगे अगर जाके तो कैसे सिखाओगे, खुद जाके पकाओगे तब ना। अब मास्टर बच्चे को जब पढ़ा, आप अपना छोटा बच्चा है पढ़ रहा है, आप पीएचडी हो, बड़े डॉक्टर हो, उसको एबीसी लिख रहा है, वो गलत लिख रहा है, तो आप ऐसे नहीं लिखते बेटा, ऐसे लिखते हैं ABC, तो आप लिख के दिखाओगे ना, तो जब आप ABC लिखोगे तो इसका मतलब थोड़ी है कि आपको ABC आती नहीं है, आप तो पढ़े लिखे हो, लेकिन बच्चे को सिखाना इसलिए लिखा रहे,
तो बच्चा की तरह लिखना बोलेंगे लिखेंगे तब सीखेगा ना वो, और आप रसोई में जाके खुद बना के दिखाएंगे तब वो सीखेगा ना। कपड़े किसी को सिलाई करने सिखाना है तो खुद काट के सिलाई करेंगे तब सीखेगा ना। तो ऐसे ही भगवान को जब भक्ति सिखानी है तो भगवान भक्त बन के आएंगे तब सिखाएंगे ना, और भक्त बन के भगवान आएंगे तो जो भगवान का परम भक्त है उसको साथ लाएंगे कि भक्ति कैसे की जाती है वही बताएगा। भगवान तो भक्ति लेते हैं लेकिन भक्ति करता है उसको साथ लाना पड़ेगा ना। तो श्री कृष्ण भगवान अपने साथ को राधा रानी अपने साथ राधा रानी को मिला लिया, दोनों एक बन गए, दोनों एक बन गए। जैसे आप कभी कभी देखते हैं राधा कृष्ण का एक ऐसा चित्र देखा है इसमें एक 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 हाथ और एक पांव ही केवल राधा का और एक कृष्ण का दिखता है, ऐसे वो आपस में बोलते हैं जुगल रूप ऐसे दिखाते हैं फोटो में, कभी ऐसे देखा है आपने? लेकिन वो तो आपस में ऐसे दोनों मिल गए हैं कि राधा रानी ऊपर से ढक पर्दे की तरह आ गई और अंदर में कृष्ण है, अंदर में कृष्ण है और बाहर राधा रानी है। क्योंकि काम राधा रानी वाला करना है, काम कौन सा करना है? प्रेम भक्ति का करना है। तो बाहर से राधा रानी का स्वरूप है, अंदर श्री कृष्ण है। तो राधा रानी का रंग कैसा है? गोरा, वो गोरी है, राधा रानी गोरी है। कैसी गोरी है? तप्त कंचन गौरंगी, उनका हर एक अंग गोरा है। कैसा गोरा है? पिघले हुए सोने जैसा, मोल्टन गोल्ड। तो आज कृष्ण जब राधा रानी के भाव में, राधा रानी की कांति, कांति का मतलब उसका रंग, उसको जब धारण करके आए तो उनका नाम हो गया गौरंगा। राधा रानी है गौरंगी और चैतन्य महाप्रभु का नाम है गौरंगा। और ये 500 साल पहले जब भगवान श्री कृष्ण अपने साथ राधा रानी को मिलाकर गोरे रंग में प्रकट हुए तब वो भक्त के भाव को अंगीकार करके आए, भक्त बन के आए, क्योंकि उनको भक्त बनाना था, उनको भक्त बनाना था। भक्त बनने के बगैर कोई भी भगवान के धाम में नहीं जा सकता, कोई भगवान को जान भी नहीं सकता भक्त बनने के बगैर। भक्त बनने के बगैर कोई भी भगवान को जान नहीं सकता। भक्त्या माम अभिजानाति, केवल मुझे भक्त जानते हैं। और भक्ति पता है शुरू कहां से होती है? जहां मुक्ति समाप्त होती है वहां से भक्ति शुरू होती है। दुनिया के लोग मुक्ति चाहते हैं और मुक्ति के बाद भक्ति शुरू होती है। तो भक्ति से ही भगवान को जाना जा सकता है। भगवद गीता में भगवान ने कहा था केवल भक्ति से मुझे जाना जा सकता है। प्रेम मई सेवा के द्वारा भगवान को वश में किया जा सकता है। वश में किया जा सकता है मतलब सुप्रीम लॉर्ड के बी कंट्रोल्ड बाय प्योर लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेम मई भक्ति की सेवा से भगवान को अपने वश में किया जा सकता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबसे बड़ी उत्तम चीज इस दुनिया को दी है, भगवान को प्रेम से कैसे अपने बस में कर लो, भगवान को अपना बना लो, अपना मित्र बना लो, अपना पुत्र बना लो, अपना प्रेमी बना लो, अपना मालिक बना लो। कैसे? प्रेममयी भक्ति के द्वारा। तो भक्तिमयी सेवा, भक्ति के अंदर प्रेम और सेवा दोनों शब्द समाये हुए हैं। भक्ति अकेला शब्द नहीं है, भक्ति के साथ जुड़ा हुआ है सेवा। ये शीला प्रभुपाद पहले व्यक्ति है जिसने भक्ति शब्द को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है डिवोशनल सर्विस। सर्विस कोई नहीं समझते थे भक्ति का मतलब ऐसे ही नाचना कूदना बस हो गया, नहीं, सेवा। कैसे सेवा? जैसे नौकर सेवा करता है तनख्वाह लेके, ऐसे ना, प्रेममयी सेवा। जैसे
जिसे माँ अपने बच्चे की करती है। माँ अपने बच्चे से पैसा लेती है उसका धुलाने का, खिलाने का, सुलाने का, नहीं, प्रेम से सेवा करती है। माँ जैसे अपने बच्चे की सेवा करती है, प्रेमी जैसे अपने प्रेमी की सेवा करता है, सब कुछ उसको अर्पण कर देता है क्योंकि प्रेम के कारण करता है। ऐसे प्रेम से जब सेवा की जाती है भगवान को तो उसको भक्ति कहते हैं, प्रेममयी सेवा। जैसे शबरी की कैसी सेवा राम की करती थी, राम जी तो शबरी के घर में आए थे कई सालों के बाद, लेकिन उसके गुरु मतंग ने एक दिन कह दिया था तेरी सेवा से मैं संतुष्ट हुआ हूं, तुम्हारे पास भगवान श्री राम दर्शन देने आएंगे। इस बात के ऊपर इतना उसको विश्वास था, इतना विश्वास था कि गुरु मतंग तो चले गए, वो अकेली रहती थी, रोज रास्ता साफ करती थी, रोज फल चुन के आके रखती थी और रोज ऐसे बैठती थी कि राम जी कब आएंगे। साल गुजर गए, कई साल गुजर गए, लेकिन रोज ऐसे करती थी, रोज ऐसे करती थी कि एक दिन जरूर राम जी आएंगे क्योंकि मेरे गुरु के ये वचन है और गुरु जी ने कहा है तो राम जरूर आएंगे। सालों तक ऐसे ये सेवा कर रही थी, बूढ़ी हो गई। आखिरी साल जब 14 साल के वनवास का लास्ट ईयर जो बचा था तभी सीता का हरण हुआ था, तो 13 साल बीच में, यही तो कहा था गुरुजी ने, अभी तो वो आए हैं चित्रकूट में, एक दिन तुम्हारे को दर्शन देंगे। चित्रकूट से पिंबा सरोवर जहां सबरी रहती थी, किष्कंधा कांड जहां से शुरू होता है, वहां तक आने में 12 साल लग गए थे और 12 साल तक सेवा कर रही थी। हमको क्या सिखा रही थी शबरी, कि रोज उठ के हमको भगवान की सेवा करनी है, एक न एक दिन भगवान मिलेंगे, रोज उठ के भगवान का दर्शन करना है, रोज भगवान को वस्त्र पहनाना है, रोज भगवान की आरती करनी है, रोज भगवान को भोग लगाना है, ये रोज करना है। रोज रास्ता साफ करती थी शबरी, रोज फल ला के रखती थी, कल आएंगे कोई बात नहीं, और एक दिन लाके साफ करके रास्ता फल बैठी थी, तब तक सामने से राम और लक्ष्मण आ ही गए। उसका जीवन आज सफल हुआ, देखा राम जी को गुरु के वचन का सत्य करते हुए, देखा राम जी को बिठा के प्रेम से बेर खिलाया, और उसके बाद सबरी ने राम को देखा, उसके बाद आंख बंद करके शरीर त्यागा और वापस भगवान धाम चली गई। फिर और किसी को देखने का इंतजार नहीं किया, फिर रुकी नहीं, इसी के इंतजार में बैठी हुई थी। तो इतनी सारी प्रेम से सेवा करने का अर्थ यह है कि केवल भगवान मिल जाए, हमें भगवान से कुछ नहीं चाहिए। पहले क्या कम दिया है भगवान ने हमको, इतना सुंदर शरीर दिया है, इतना सुंदर मानव का शरीर दिया, कितनी बड़ी भगवान ने कृपा की है हमारे को, और कितना सुंदर वातावरण में खाने पीने का, पुत्र परिवार, इतना सब कुछ दिया है, तो उसको और कुछ मांगने की क्या जरूरत है, उसे उसी को मांग लो ना, वही मिल जाए तो हमारा जन्म सफल हो गया। जिसकी मांगने की इच्छा है वो भिखारी है, जिसकी देने की इच्छा है वो दाता है। भगवान को हमें अपने आप को अर्पण करके देना चाहिए। हम कल बोल रहे थे मंदिर बहुत है, मंदिर में जाने वाले बहुत हैं, लेकिन मंदिर के दरवाजे के ऊपर खड़े होके लोगों से पूछो कि मंदिर में क्यों जाते हो, लोग क्या कहेंगे आप सुन लो, उनसे लोग मंदिर में क्यों जाते हैं पूछो मंदिर लोगों से क्या कहेंगे लोग, हमारा दुख है उसको दूर करने के लिए भगवान को प्रार्थना करने जाते हैं, हमारा धंधा ठीक नहीं चल रहा है भगवान कृपा करेंगे तो धंधा अच्छा चलेगा, बेटी की शादी नहीं हो रही है भगवान की कृपा होगी तो बेटी की शादी हो जाएगी। अरे कुछ देने जाते हो भगवान को, केवल लेने ही जाते हो, मंदिर में सब भगवान से कुछ लेने जाते हैं, कोई भगवान को, आप भगवान को क्या दोगे, आपके पास है क्या अपना जो दोगे, इस दुनिया में आए थे तो आपके पास आधा मीटर कपड़ा था, पहन के आया था कोई दुनिया में, आधा मीटर कपड़ा भी कोई पहन के नहीं आया, छोटा सा इतना बच्चे के लिए चलिए उतना भी कोई साथ नहीं लाया, तो तुम्हारे पास है तुम्हारा अपना है क्या, जिसको तुम अपना मान के बैठे हो ये तुम्हारी मान्यता है, तुम्हारा है तो नहीं, तुम लाए थे क्या अपने साथ। आज सुबह मैं ऐसे ही कह रहा था कि जैसे कोई किसी का घर आपका घर है ना, तो आपसे पूछेंगे आपके घर में कौन रहता है तो आप क्या कहेंगे, मैं रहता हूं, मेरी पत्नी, मेरे दो बेटे रहते हैं, माता पिता, यही कहेंगे ना। लेकिन आपके घर में इन 5-6 के अलावा
मिलियंस एंड ट्रिलियंस लाखों और करोड़ और छोटे छोटे कीटाणु रहते हैं, चींटियां रहती है कि नहीं रहती?
वो भी जब बाहर घूमने जाती है ना तो कहती है कि हमारा घर है,
वो भी कहती है कि हमारा घर है। तुम कहते हो हमारा घर है, वो भी कहती है हमारा घर है, हम इस घर से अभी आएंगे।
तो ये आपका अकेले का घर है ऐसे मान लेना ठीक नहीं है, वो भी उसको अपना ही घर मानती है।
वो जो पेड़ आपके घर में वो भी कहता है ये मेरा घर है, और आपसे पहले से वो है और आप जाएंगे फिर भी रहेगा,
वो कहता है ये मेरा घर है,
वो भी जीव है, जीव है। तो ऐसे आप सबको अपना मान के बैठे हैं लेकिन आपका है कुछ नहीं। ये बात भी हम दो चार दिन से रोज कह रहे हैं सबको, आपके जेब में आपके देश का नोट है ना, जेब में नोट होगा ना, आप उसको क्या मानते हैं कि मेरा है, ये मेरे पैसे से मानते हो? कभी उसके ऊपर पढ़ के देखो लिखा हुआ क्या है, आपके नोट के ऊपर क्या लिखा हुआ, बस ये पढ़ के देखो,
गवर्नमेंट रिजर्व बैंक और गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस की प्रॉपर्टी है, और आप कहते हो मेरे लिए तो चोर होते नहीं हो,
उसके ऊपर लिखा है तुम्हारे भैया और तुम कहते हो मेरा, ये सच है कि झूठ है? उसके ऊपर लिखा है साफ के ये तुम्हारा नहीं है। ऐसे हर चीज के ऊपर लिखा है, भगवान कहते हैं कि ये मेरा है, मैं तुमको दिया है क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। आपको क्यों दिया है ब्रिटिश गवर्नमेंट नोट? क्योंकि आप इस देश के नागरिक हो, आप इस देश के पुत्र हो, वो पिता है जैसे देश माता मानते हैं, आपको पालन पोषण करने के लिए दिया है ताकि आप दो टाइम की रोटी कमा के खाओ, लेकिन आपका है नहीं। ऐसे इस दुनिया में जो कुछ है उसके ऊपर भी ऐसे लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉडहेड, ये भगवान की प्रॉपर्टी है, ये धरती विष्णु पत्नी है, ये लक्ष्मी विष्णु पत्नी है, ये प्रकृति में जो कुछ देखता है ये सब भगवान का है, हमारा नहीं है। हमको दिया गया है क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं, हमको जो जो आवश्यकता है वो दिया गया है, तो हम भगवान को क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते, सब कुछ उसी का है तो क्या देंगे उसको? इसलिए क्या आप दे सकते? केवल प्रेम दे सकते आप भगवान। भगवान हमसे प्रेम करते हैं, और हम अगर भगवान से प्रेम करना सीखें तो उसी को भक्ति कहते हैं। तो भगवान से मांगने जाना एक बात है, मंदिर में लोग या तो जाते हैं डर के मारे, मंदिर में नहीं जाएंगे तो पाप हो जाएगा, फिर तो पता नहीं कहां दंड भोगना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा, तो डर के मारे जाते हैं। और या तो इच्छाओं को पूरी करने के लिए जाते हैं, ये मंदिर में जाएंगे ये मिल जाएगा, मंदिर में जाएंगे तो ये भी मिल जाएगा, मंदिर में जाएंगे ये भी मिल जाएगा। लोग साधु संतों के पास जाते हैं ना, और उनसे क्या मांगते हैं? साधु ने ले लिया संन्यास, घर बार परिवार छोड़ दिया, सर महाराज आशीर्वाद करो मेरी शादी हो, महाराज बोला ये आशीर्वाद मैंने अपने को नहीं दिया, तेरे को महाराज को दिया। लोग क्या उनसे मांगते, सोचना चाहिए ना किसके पास जाके क्या मांग रहे हैं। आपकी बात यहां नहीं है, भारत में भविष्य देखने वाले रोल के ऊपर बैठते हैं, उनके पास एक पैरट होता है तोता, और कुछ कागज होते हैं, 5 रुपया दो तोता एक कागज उठाएगा उसमें भविष्य पढ़ेंगे आपका, और उसके उधर लिखा होगा आइए आइए आपको लखपति बना देगा, आपका भविष्य देखेंगे, आपका फ्यूचर देखेंगे। तो हमने तोते वाले से पूछा कि तुम्हें सबका भविष्य देख के लखपति बनाना है, पहले तू रोड के ऊपर तोता पकड़ के क्यों बैठा, तू अपने को तो लखपति बना, खुद रोड के ऊपर 5 रुपये में दूसरों को लखपति बना रहा है, अरे अपने आप को तो बनाना पड़े। तो इस दुनिया में भगवान के पास देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, आपका अपना है ही नहीं कुछ, एक ही चीज आपके पास है भगवान को देने के लिए, वो है प्रेम, जो अब आप दुनिया में बांध के बैठे हो। आपने अपना प्रेम कहां कहां बांध के रखा है पता है? बाजार में सब्जी लेने जाते हैं ना, एक बैंगन जरा तोल से ज्यादा लेना होता है ना तो दुकानदार एक भैया ले लो, उसको मुस्कुरा के प्रेम से कहेंगे एक बैंगन ले लो, एक बैंगन के बदले तो मुस्कुराहट देके प्रेम से बोलेंगे, लेकिन बच्चे से मुस्कुरा के नहीं बोलेंगे, चुप क्यों खा रहा है बैंगन, हम इतना दुनिया में छोटी छोटी बातों में मुस्कुराते बांटते हैं, लेकिन जहां बच्चों को प्रेम देना चाहिए वहां हमारे पास नहीं है, वहां झगड़ा शुरू कर देते हैं। हमने प्रेम दुनिया में छोटी छोटी बातों में बांट के रखा है, जबकि कहीं किसी ने भी हमको उस प्रेम के बदले प्रेम नहीं दिया है। अकबर बादशाह एक बार, शहंशाह अकबर ग्रेट एम्परर, अपने मंत्री बीरबल के साथ जा रहा था, तो उसको सब्जी मार्केट में एक बैंगन बहुत अच्छा लगा। अह बीरबल देखो तो बैंगन कितना सुंदर है। बीरबल कहते हैं महाराज ये तो किंग है, देखो इसके ऊपर ऊपर चिरंगी लगी हुई है, क्राउन है, ब्यूटीफुल है। हाँ अच्छा ले लिया। दूसरे दिन पकाया खाया, अकबर का पेट खराब हो गया बादशाह का। दूसरे दिन बोलता है बीरबल बैंगन तो बिल्कुल बेकार है। बोला महाराज यूजलेस है, कभी नहीं खाना चाहिए। अरे बीरबल कल तुम बोल रहे थे बैंगन अच्छा है, आज तुम बोल रहे हो खराब है। बीरबल ने बोला महाराज मैं आपका दास हूँ, बैंगन के बाप का दास नहीं हूँ। आपने कहा अच्छा, मैंने कहा अच्छा, आपने कहा खराब, मैंने कहा खराब। तुम कहने में बैंगन का दास हूँ क्या, मैं तो आपका दास हूँ। हमको भी ऐसे सोचना चाहिए कि हम भगवान के दास हैं, हम कृष्ण के भक्त हैं। दुनिया में क्या अच्छा है क्या बुरा है हमें क्या लेना उससे। भगवान कहते ये अच्छा है हमारे लिए अच्छा, भगवान कहते खराब हमें छोड़ दिया, हमारा कोई मतलब नहीं। तो हम असल में दुनिया को अच्छा दिखाने के लिए टाइम खराब कर रहे हैं। माफ करना आप लोग, आज कहीं शादी पार्टी होती तो आप कैसे सुंदर से ढल के जाते जाते कि नहीं जाते, अच्छे से अच्छी साड़ी कोई जो भी कपड़े होते निकालते कि नहीं निकालते। और आज भगवान के पास आए जैसे जैसे उठ के आ गए। अरे सुंदर भगवान के पास बन के जानना चाहिए, जो देखे कि अरे मुझे प्रेम से आया है देखने, कि भगवान का मन आ जाए कि मेरा भक्त कितना बड़ा सुंदर सच धन के मेरे पास आया है। दुनिया ने किसी ने देख लिया तो अपराध हो जाएगा और क्या क्या काम होगा। ये छोटी सी बात है लेकिन समझ में आने वाली है कि भगवान के लिए नृत्य करना है, भगवान के सामने करना चाहिए, वो प्रसन्न हो जाएगा तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बाहर कहीं करेंगे तो लोग आंखें मार के हमारे को बुरी तरह से देखेंगे, कोई प्रेम से नहीं देखेंगे। भगवान ही प्रेम करने के योग्य है, और दुनिया में जिस जिससे हमने प्रेम किया उसने हमको धोखा दिया। एक दिन तो हमको छोड़ के ही चला जाएगा, मरेगा तो जाएगा ना, रहेगा इंतजार तो नहीं रहेगा। तो इस दुनिया में प्रेम होता ही नहीं है, इस दुनिया में सबका काम होता है इच्छा पूरी करने के लिए, सब प्रयास करने। चेतन महाप्रभु ने पहली बार इस धरती के ऊपर आकर प्रेम करना सिखाया, भगवान से प्रेम और भक्ति कैसे की जाती है, ये बहुत बड़ी शिक्षा चेतन महाप्रभु की है। और भक्ति के बगैर भगवान की प्राप्ति और भगवत धाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। बार बार इस दुनिया में जन्म लेना पड़ता है और कोई रास्ता नहीं, इसलिए भक्ति करना और मानव जन्म में ही केवल भक्ति की जा सकती है। दुर्लभ मानव तन है, बड़े घात मानुष तन पावा सुर दुर्लभ। भगवान से प्रेम और भक्ति कैसे की जाती है, ये बहुत बड़ी शिक्षा चेतन महाप्रभु की है। और भक्ति के बगैर भगवान की प्राप्ति और भगवत धाम की प्राप्ति नहीं हो सकती है। बार बार इस दुनिया में जन्म लेना पड़ता है और कोई रास्ता नहीं, इसलिए भक्ति करना और मानव जन्म में ही केवल भक्ति की जा सकती है। दुर्लभ मानव तन है, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये भगवान रामचंद्र की सिखाया शिक्षा है अपनी पूरी प्रजा को, सारे प्रजाजन को इकट्ठा करके बिठा के और भगवान श्री रामचंद्र ये शिक्षा दे रहे हैं कि भाग से मानव का शरीर मिला है, भाग से मानव का शरीर मिला है, इसलिए ये देवताओं को मिलना मुश्किल है। इसका अर्थ क्या निकालना चाहिए, इसका अर्थ ये निकालना चाहिए जो स्वर्ग में जाना चाहते हैं वो खराब टाइम कर रहे हैं, क्यों देवताओं को भी जब ये भक्ति मिलती नहीं है। एक बार प्रहलाद महाराज को भगवान नरसिंह देव ने कहा आपको स्वर्ग आदि चाहिए जो मांग लो। बोला मेरे पिता से तो इंद्र डर के भागता था, तो उस सड़क पर मैंने क्या करूंगा, वो मेरे पिता के घर का है, तो उस सड़क में मैं जाके करूंगा क्या? जब जो इंद्र है तो हिरण्याकश्यप डर के भाग के चला गया था, तो उस सड़क में जाके करेंगे क्या? जहां के देवता खुद मानव बनने के लिए आने को तैयार है, सुर दुर्लभ देवताओं के लिए दुर्लभ है, जो सब ग्रंथन गावा सारे शास्त्र कह रहे हैं मानव नारायण को प्राप्त करने के लिए नर देही ये मानव शरीर यही एक बिना है, लेकिन उसको भी प्राप्त करने के लिए जब भक्ति नहीं होगी तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी, केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। लोग कर्मी बहुत हो सकते हैं, ज्ञानी हो सकते हैं, योगी हो सकते हैं, लेकिन भक्त बहुत कम है। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को आज हम पढ़ रहे थे रूप गोस्वामी को, दुनिया के अंदर असंख्य जीव हैं, इनम्यूनरेबल लिविंग एंटिटीज पूरे ब्रह्मांड में पता नहीं कहां कहां घूम रहे हैं, उनमें मानव सबसे कम है, अल्प संख्या में अल्प मानव दुर्लभ है, अल्प है, बहुत कम है, स्मॉल क्वांटिटी मानव, उन मानव में भी आर्य बहुत कम है। आर्य का मतलब जो वेद को जानने वाले और वेद के ऊपर चलने वाले, अथवा जिसको सिविलाइज बहुत कम है, मलेच सबर पुलिंद जंगली लोग जो ट्राइबल में रहते हैं, जो आज भी आते हो कितने ट्राइब में अफ्रीका में रह रहे हैं, उनको मानव अकेले तो कहते हैं लेकिन काम उसके मानव जैसे नहीं, वो तो पशु जैसा काम कर रहे हैं सारे। तो ऐसे मानव में भी बहुत सारे तो ऐसे हैं जो मानव के नाम के हैं लेकिन मानव के काम उनके नहीं। जो वेदों को मानने वाले आर्य लोग हैं उनमें से भी 90% से ज्यादा तो केवल धर्म का नाम जबान से लेते लेकिन उसके ऊपर चलते नहीं। कल परसों हमने किसी को कहा था कि आपको अगर ये देखना है कि कितने लोग धर्म के ऊपर चलते हैं कितने नहीं चलते हैं, तो अपने घर में जाके एक्सपेरिमेंट कर लो, अपने घर में जाकर देख लो कि कितनों के बच्चे रोज माता पिता के चरण छूते हैं, कितनों का बेटा पिताजी का चरण दबाता है सोने से पहले, देख लो जितने होते हैं उतने ही धर्म के ऊपर चल रहे हैं, बाकी कोई धर्म के ऊपर नहीं चल रहे। कितने बच्चे आपका कहना मानते हैं बोलो, जरा सोचो तो, कोई पांव पड़ता है बच्चा घर में, बहू कोई सास के पांव दबा रही है, सास को सर में दर्द था, सास ने कहा बहू जरा सर दबा दो, बोला सास जब गले में दर्द हो तब बुला लो। आप देख लो कितने धर्म के ऊपर चल रहे हैं, अगर आपके घर में आपके बच्चे आपका कहना मानते हैं और आपके चरण रोज छू के जाते हैं तो आप धर्म के ऊपर चलने वालों में आते हो, नहीं तो आपका धर्म खत्म हो गया। आज आप बड़े थे, आप जब छोटे थे तब ये घर में होता था कि नहीं होता था, लेकिन आप नहीं रह गया ना, इसका मतलब धर्म हमारा समाप्त होता जा रहा है। तो ऐसे जिनका जो धर्म के ऊपर चलते हैं उनमें भी बहुत से सिर्फ मंदिर में जाते हैं घंटी बजाने के लिए, दो फल भगवान को चढ़ाने के लिए, लेकिन भगवान को प्रेम करने के लिए नहीं जाते, सेवा करने के लिए नहीं जाते, उसको बोलते हैं कर्मनिष्ठ। भगवान हम तुमका ही पूजा करते हैं, तुम हमारे लिए कुछ सुख सुविधा का प्रबंध कर दो, नहीं तो मरने के बाद कम से कम स्वर्ग तो दे देना, इसको बोलते हैं कर्मनिष्ठ। और ऐसे 10 मिलियन कर्मनिष्ठ हो, उनमें से कोई एक ज्ञानी होता है जो कहता है इससे कुछ लेना देना नहीं, स्वर्ग में जाके भी वापस आना पड़ेगा, दुनिया में भी कुछ नहीं है, भगवान का जो ज्योति है उसमें मिलना चाहिए, ब्रह्म में लीन होना चाहिए, उसको ज्ञानी बोलते हैं। और ऐसे 1 करोड़ ज्ञानी, 10 मिलियन ज्ञानी इकट्ठे करो, उनमें से कोई एक होता है मुक्त, जो सचपच बंधन से मुक्त हो जाता है। कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ 1 कृष्ण भक्त, ऐसे 10 मिलियन ऐसे जो मुक्त हैं, उनमें से कोई एक मुश्किल से कृष्ण भक्त होता है। ये शिक्षा आज सुबह हम पढ़ रहे थे। तो भक्ति इतनी दुर्लभ है और ये दुर्लभ भक्ति महाप्रभु चैतन्य सुलभ करके सबको देने के लिए आए और कह दिया कि ये मेरी इच्छा है कि ये भक्ति दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे, हर दुनिया के गांव गांव में पहुंचे। और प्रभुपाद जी ने इस भक्ति को पूरी दुनिया के अंदर पहुंचाई और 74-75 में 74 में प्रभुपाद जी ने मॉरिशस में आकर इस भक्ति का यहाँ प्रचार किया। उसके अंतर्गत आप आज जहाँ बैठ के मौंता एम्बुलेंस में कृष्ण भक्ति और चैतन्य महाप्रभु के बारे में जान रहे हैं। नहीं तो ये आज से 40 साल पहले किसी को मालूम नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु कौन है और कृष्ण भक्ति क्या है। तो ये बहुत बड़ी दुर्लभ चीज है जो हमको प्राप्त हुई है। अब हमको बुद्धिमान बनकर इंटेलिजेंट बनकर इस भक्ति को ग्रहण करना चाहिए। और ये भक्ति करने के लिए सब कर सकते हैं। इस भक्ति करने के लिए एक काम है भोजन करना। सबको करना आता है कि नहीं आता है? तो भक्ति का सबसे सरल तरीका है भोजन करना। सब करते हो ना? क्या करना चाहिए? वो कुछ पकाना चाहिए जो भगवान को पसंद है, जो भगवान चाहते हैं, पकाकर और भगवान को भोग लगाना चाहिए और फिर वो प्रसाद सारे परिवार को खिलाना चाहिए, तो आप भक्त बन गए। जीभा से भक्ति शुरू होती है, पुस्तक पढ़ने से नहीं होगी। केवल जबान से, टंग से भक्ति शुरू होती है। और टंग के दो काम है, खाना और बोलना। खाने के लिए भगवान को प्रसाद बनाओ जो भगवान को पसंद है। मैं आपके घर आऊं मेहमान, मैं तो खैर कोई बात नहीं, कभी आया आपका प्राइम मिनिस्टर आपके घर मेहमान बन के आए और वो कहे कि मुझे पानी का गिलास दो और आप कहोगे नहीं नहीं सर, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर है, आप घी का गिलास पीजिए, ये प्योर गाय का घी है। अरे गाय का घी है लेकिन मुझे प्यास लगी है पानी। महाराज पानी तो सब पीते हैं सर, पानी तो सब पीते हैं, आप जैसा बड़ा आदमी आपको तो घी। अरे मुझे घी नहीं, मुझे ब्लड प्रेशर है, घी से मर जाऊंगा। महाराज आप मरो तो मरो लेकिन हम पिलाएंगे घी। ऐसे लोग हमें जो पसंद है वो आपको, अरे पानी चाहिए भाई, पानी दो ना। नहीं पानी नहीं चाहिए, आप शरबत पी लो। शरबत में नहीं, हम पानी तो सबको देते हैं, आपके लिए शरबत अभी बहुत अच्छा बनाया है, ये मैंगो शेक है, इसमें शुगर डाला, मैं डायबिटिक हूँ, मुझे नहीं चाहिए। अरे आप मरो तो मरो लेकिन पियो शरबत। अरे जो मांगता है वो दो ना भगवान को। वो कहते पत्रम पुष्पम फलम तो यम योगे भक्त प्रच्छति, एक फल फूल दे दो, एक फूल दे दो, फल दे दो, गन्ने का जूस निकाल के मेरे को दे दो, कोई बात नहीं, जो सिंपल सी चीज आपके पास है। एक गरीब से गरीब आदमी पानी का गिलास तो भगवान को अर्पण कर सकता है, तुलसी का पत्ता अर्पण कर सकता है, एक फूल कहीं से उठा के बाहर से अर्पण कर सकते हैं और भगवान का भक्त बन गया। तो एक तो भगवान को घर में जो बनाते हो वो बनाओ जो भगवान मांगता है, जो भगवान चाहता है वो बना के उसको भोग लगाओ, जो आप चाहते हो वो नहीं। प्रायः हमको जो चाहिए वो हम अपने लिए बनाते हैं और भगवान को दिखाते हैं, देखो हमने ये बनाया है खा रहे हैं तुम देख लो। भगवान कहते हैं मैंने पहले बहुत देखा है, हमारी इच्छा होती है और भगवान को हम दिखाते हैं सब जाके, लेकिन भगवान के लिए बनाना और बात है। और दूसरा मुख से भगवान का नाम उच्चारण करो। भक्त बनने के लिए दो काम है, भगवान का प्रसाद खाओ, भगवान का नाम उच्चारण करो,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो आपके यहाँ मानसा एम्बुलेंस में ये जगन्नाथ भगवान के प्रीचिंग केंद्र के ऊपर भक्त लोग आते हैं हर सप्ताह में, और यही संदेश है, दो काम कीजिए, प्रसाद खाइए और भगवान का नाम लीजिए और अपना जन्म सफल कीजिए। बार बार मानस तन पावना बच्चों का खेल नहीं, ये बच्चों का खेल नहीं है कि बार बार मानस तन मिल जाएगा दोबारा इंसान बनेंगे, जरूरी नहीं है। जो धन की चिंता में मरता है, घर में जिसके बहुत धन होता है ना और धन की चिंता करके मरता है ना, उसी के घर के अंदर वो कुत्ता बन के पैदा होता है, उसी घर में वापस कुत्ता बन के आएगा। और जो घर में आएगा उसको बहुत 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 करेगा, क्यों बोला मेरा धन है मत खाना, और घर वाले उसी को डंडा मारते हैं। लिखा है कि जो मरते समय जिसका ध्यान करेगा वही हो जाएगा, तो धन का ध्यान करेगा तो उसी घर के अंदर, या मेरे ख्याल में मरीज वालों का ज्यादा धन नहीं है, सब बेचारे इतना है जितना खाते हैं, कठा से किसी के पास ज्यादा नहीं है ना, क्योंकि ज्यादा धन वाला मरता है धन का ध्यान करते तो वो सांप बनता है, यहाँ सांप है नहीं, इसका मतलब लोग यहाँ अच्छे हैं। लिखते हैं वो सांप बना है, शास्त्र में लिखा है वो सांप बन के आता है और घर के ऊपर ऐसे बैठा होता है, किसी को नजदीक नहीं आने देता। अच्छा है आप लोग इतना ज्यादा कथा नहीं किया है, खाया पिया खाया, भगवान का नाम जपो और सुखी हो जाओ। हरे कृष्ण। धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, क्वेश्चन और कमेंट? 12 बजे हमने 12 बजे तक था फिर गुणा। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए मान।
आपने अभी तो राधा के बारे में तो कुछ कर दिया, लेकिन रुक्मिणी के बारे में आपने नहीं कहा।
रुक्मिणी लक्ष्मी है, रुक्मिणी द्वारकाधीश बोलना, रुक्मिणी राधा कृष्ण बोलेंगे, रुक्मिणी द्वारकाधीश बोलेंगे। द्वारका में रुक्मिणी लक्ष्मी है जो राधा का विस्तार है। जैसे कृष्ण के अवतार बहुत सारे हैं, विष्णु के अवतार जैसे दुनिया में कितने आते हैं नरसिंह आदि, ऐसे राधा के अवतारों में एक तो है लक्ष्मी जो वैकुंठ में रहती है, और एक है द्वारका की भगवान की रानियां रुक्मिणी आदि, और एक है वृंदावन गोपियां, ये सब राधा रानी के अवतार हैं। तो रुक्मिणी द्वारकाधीश के नाम से हमारे बहुत मंदिर हैं, रुक्मिणी द्वारकाधीश, क्योंकि रुक्मिणी द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के संग में थी और वो साक्षात लक्ष्मी है। तो द्वारका रुक्मिणी द्वारकाधीश का मंदिर, हमारा लॉस एंजल्स के मंदिर का नाम है रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर। तो रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण के, रुक्मिणी द्वारकाधीश उसका नाम है, ऐसे मंदिर है। लेकिन प्रेम दो प्रकार का है, एक प्रेम है भगवान श्री कृष्ण का अपने रानियों के साथ जैसे द्वारका में, और एक प्रेम है जैसे राधा और गोपियों का वृंदावन में है। तो दोनों प्रेम में एक को कहते हैं ऐश्वर्य का प्रेम, एक को कहते हैं माधुर्य प्रेम। ऐश्वर्य प्रेम मतलब किसी को बहुत बड़ा आदमी समझकर उससे प्रेम करना, और माधुर्य का मतलब अपने आप को बड़ा न समझे बराबर का समझ के प्रेम करना। तो वृंदावन का जो प्रेम है माधुर्य प्रेम है, वो प्रेम में सबसे उत्तम कोटि का प्रेम माधुर्य प्रेम है। इसलिए भक्तों ने हमेशा राधा कृष्ण के नाम को ज्यादा प्रचार किया। लेकिन ऐश्वर्य प्रेम के जो भक्त हैं, या फिर भी हमारे जितने मंदिर हैं उसमें है राधा कृष्ण, लेकिन पूजा होती है लक्ष्मी नारायण के स्तर की, द्वारकाधीश के स्तर की पूजा होती है। 56 भोग आदि वृंदावन में नहीं लगते, ये तो केवल लक्ष्मी नारायण के स्तर की पूजा होती है मंदिरों के अंदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। रुक्मिणी द्वारकाधीश का मंदिर भी चल के देखना कभी।